मेरे प्यारे युवा मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स, बस एक खबर की चर्चा मैं आपसे कर लूं, इसके बाद सीधे मुख्य विषय पर आऊंगा। खबर यह है कि जो कांगड़ा की चाय होती है उसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। लेकिन ये जो जीआई टैग दिया गया है ये भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, भारत सरकार ने तो काफी पहले दे दिया था। ये जीआई टैग दिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन यानी कि जिसमें यूरोप के कई देश शामिल हैं, 26-27 देश शामिल हैं, उन देशों के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि सिलेबस में सीधे सीधे ये लिखा हुआ नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीआई टैग क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बस उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जो चीज उत्पादित हो रही है या कोई भी चीज अगर बन रही है तो वह चीज वहां की विशेषता है, और चूंकि वह चीज वहां की विशेषता है, चाहे वह जमीन से उत्पादित हो रही हो या कारीगरों के द्वारा बनाई जा रही हो, जो भी हो, वह उस स्थान की विशेषता है, तो उसे एक पहचान दे दी गई है, टैग दे दिया गया है, या यूं कह लीजिए कि कानूनी मान्यता दे दी गई है। जैसे कांगड़ा टी, तो अब ये जो कांगड़ा टी है यदि उसे मान्यता दे दी गई है, इसका मतलब यह हुआ बहुत सिंपल सी बात कि भाई ये जो कांगड़ा टी है ये कुछ विशिष्टता लिए हुए है। ये जो विशिष्टता है ये कांगड़ा की जो अपनी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसकी देन है। तो ये जो कांगड़ा चाय है अब इसी नाम से भारत में तो पहले से ही बिक रही है, जीआई टैग है तो उसका इस नाम से कोई दूसरा अपनी चाय को नहीं बेच सकता, लेकिन अब यूरोप के देशों में भी यह चाय बेची जा सकेगी कांगड़ा टी के नाम से। आप देख रहे हैं, तो इससे हुआ क्या कि जीआई टैग मिलते ही उस चीज की ब्रांडिंग हो गई, कांगड़ा टी की ब्रांडिंग हो गई यूरोपियन मार्केट में। भारत में तो ब्रांडिंग थी ही, और सीधी सी बात है कि जब किसी चीज की ब्रांडिंग हो जाती है तो कंज्यूमर के दिमाग में उसके प्रति एक विश्वास पैदा हो जाता है, और जब कंज्यूमर किसी चीज पर विश्वास करने लगता है तो उसका उपभोग करने के लिए उसे खरीदने लगता है। इसका मतलब है कि अब कांगड़ा टी को यूरोप का मार्केट मिल गया, दूसरे इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि इसके साथ छल कपट नहीं किया जा सकता, और यदि किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो ठीक है, कानून अपना काम करेगा। दोस्तों, 10 साल के लिए ये जीआई टैग मिला है, 10 साल के बाद फिर रिन्यू किया जाएगा, और अगर चीजें ठीक ठाक रहीं तो फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कांगड़ा टी को आप यूं कह लीजिए कि एक लीगल प्रोटेक्शन मिल गया, कानूनी संरक्षण मिल गया है। दोस्तों, मैं आज मुख्य विषय में जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो इसी पर ही बात करने जा रहा हूं कि जब आप किसी न्यूज को सुनते हैं और लगता है कि नहीं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, या कोई न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स, चाहे वो एडिटोरियल कमेंट हो या एडिटोरियल आर्टिकल हो, जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, यही आज का मेरा मुख्य विषय है, और इसकी शुरुआत में ये कांगड़ा चाय के साथ ही कर रहा हूं। तो जीआई टैग पर आपने थोड़ी सी तैयारी कर ली, फिर कांगड़ा चाय, तो ये कांगड़ा क्या है, थोड़ा सा कांगड़ा देख लीजिए, है ना। कांगड़ा एक शहर भी है, कांगड़ा एक क्षेत्र भी है, उसके अंदर आपने नाम सुना होगा धर्मशाला, पालमपुर, चंबा, ये सब क्षेत्र, ये सब स्थान आते हैं, तो वहां ये चाय पैदा होती है। लेकिन अब इसके साथ ही साथ कुछ बातें और हैं जो यूपीएससी के चरित्र में अब शामिल हो गई हैं। देखिए, इसका संबंध चाय से है, और यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारा देश तो चलिए अपने ढंग से अपनी चीजों को देता रहता है, तो वो एक सामान्य सी घटना होती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन से मिलना थोड़ी सी एक बड़ी घटना है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर बड़ी घटना है तो इसका मतलब है कि जो भारत की चाय है, चाहे भले ही कांगड़ा की ही हो, यूरोपीय देशों ने एक अलग तरीके से इसे मान्यता दी है। इसका मतलब है कि जो भारतीय चाय है वो वर्ल्ड मार्केट में एक्सेप्ट की जा रही है, और हम वैसे भी चाय वगैरह का निर्यात करते हैं, ठीक है। तो अब आपको चाहिए कि चाय को एक टॉपिक के रूप में ले लें और उस पर थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लें। टॉपिक के रूप में कैसे लेंगे, ये आपके ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, आप जाकर के देखें ज्योग्राफी में कि भाई चाय के लिए कैसी जलवायु चाहिए, कैसी भूमि का स्वरूप होना चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, हमारे देश में कहाँ कहाँ चाय पैदा हो रही है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले मैंने ये बताया था कि कैसे जो दार्जिलिंग चाय है उस दार्जिलिंग चाय के सामने बहुत संकट पैदा हो गया है, और संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि दार्जिलिंग चाय के नाम से दूसरे लोग चाय बेचने लगे हैं, तो दार्जिलिंग चाय जो रियल चाय है वो बेचारी पिछड़ती चली जा रही, क्योंकि वो लोग घटिया चाय दार्जिलिंग चाय के नाम से बेच रहे हैं और पता लगा कि वो बहुत सस्ती बेच रहे हैं। तो अगर किसी को इस तरह से GI टैग मिल जाए तो सोचिए कि उसका कितना बड़ा प्रोटेक्शन हो जाता है, कितना बड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट में चाय की हमारी क्या पोजीशन है, थोड़ी सी इस पर भी तैयारी कर लीजिए। ये हमारे तैयारी करने का तरीका होना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी तैयारी। मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण है, ज्यादातर स्टूडेंट इस भ्रम में रहते हैं कि नहीं अब चाय के तो एक्सपर्ट बन जाओ, जैसे कि उन्हें टी बोर्ड का कोई एग्जामिनेशन पास करके और वहां नौकरी करनी है। नहीं, सामान्य सी चीजें जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, जो किसी भी एक सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति को जानकारी में होना चाहिए, बस उतना ही। क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ने पर इतना ज्यादा जोर देने लगते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो परेशान होने लगते हैं और उनके पास अपना कुछ भी नहीं रह जाता, सब चीजें बिखरी बिखरी हैं, यहां वहां ये वो, उसका अर्थ क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, हरियाली की दीवार। ये बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट। देखिए, अगर मैं एडिटोरियल कमेंट और एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं सभी आर्टिकल और कमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आपको हम लोग बहुत से आर्टिकल्स और कमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, जो हम लोग करेंट कंटेंट के रूप में देते हैं डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होते हैं जो इंग्लिश में छपे होते हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि नहीं, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उन्हें भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वहां तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो हम लोग आपको पेस क्लिपिंग्स के तहत प्रोवाइड करते हैं वे इंपॉर्टेंट तो होते हैं, याद रखिए। फालतू का एक भी क्लिपिंग्स हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं करते कि भैया दे दो भर दो। आपने देखा होगा कि किसी दिन तो तीन तीन चार चार क्लिपिंग्स ही होते हैं, किसी दिन आठ आठ दस दस क्लिपिंग्स होते हैं, किसी दिन पता लगा कि अंग्रेजी का एक भी क्लिपिंग नहीं, किसी दिन पता लगा कि हिंदी के क्लिपिंग्स नहीं है। हमारे लिए हिंदी अंग्रेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए संख्या भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सारे जो प्रेस क्लिपिंग्स होती हैं उनके साथ समान व्यवहार नहीं करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके साथ फिर आपको सीरियस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए हरियाली की दीवार, ये जो मैं आपको आज कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, एडिटोरियल कमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या आपको नहीं लग रहा है? हरियाली से संबंधित है, अरावली पर्वत से संबंधित है और पर्यावरण से संबंधित है, तो आपको लगना चाहिए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नई परियोजना शुरू हो रही है, अरावली ग्रीन वॉल, नई परियोजना शुरू हो रही है। तो कोई भी अगर नई परियोजना है तो इंपॉर्टेंट है, और ये इतनी बड़ी परियोजना है, इसका मतलब है कि यह इंपॉर्टेंट है और आप इसे बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ें, आप इसे ध्यान के साथ पढ़ें और इस पर नोट्स तैयार कर लें, एक छोटा सा नोट। जब मैं कहता हूं छोटा सा नोट तैयार कर ले, तो केवल पॉइंट्स पॉइंट्स में आप नोट कर ले, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसे उतार लीजिए, केवल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बस आप नोट करते चले जाइए। ये क्या परियोजना है, किन किन राज्यों में शुरू की जा रही है, अरावली पर्वत श्रेणी पर शुरू की जा रही है, क्यों शुरू किया जा रहा है, इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन के तौर पर इसमें दिया हुआ है कि अफ्रीका में कुछ देश मिलकर के, अफ्रीका के कुछ देश ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना पर काम कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो वहां से कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वहां से ये योजना ली गई है, बस बात खत्म हो गई। मतलब मुश्किल से 300-400 शब्दों में मुश्किल से ये आर्टिकल आपका तैयार हो जाएगा, या कह लीजिए छोटा सा नोट तैयार हो जाएगा, दैट्स ऑल। दोस्तों, आपको ध्यान है कि कल मैंने आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कराया था दैनिक भास्कर का, लोकतंत्र के आधार स्तंभों पर उठ रहे हैं कई सवाल। अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा, पहली बात तो यह है कि अगर आपने इसे छोड़ा है तो अपने से प्रश्न कीजिए कि भाई मैंने कैसे इसे छोड़ दिया। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी पर बेस्ड है और अभी इस पर इतनी ज्यादा बहस हो रही है। राहुल गांधी जी से जो कहा जा रहा है कि आप माफी मांगिए, तो यही कहा जा रहा है ना कि आपने वहां जाकर के आरोप लगाया कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, आपने कैसे ये कह दिया, यही तो कहा जा रहा है। और लगातार इसको लेकर के देश में भी बहस छिड़ी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, फलाने फलाने लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तो मतलब ये जो टॉपिक है ये अभी बहस का मुद्दा तो है और बहुत ही बर्निंग बहस का मुद्दा है, और जिस चीज पर बहस हो रही है लोकतंत्र पर वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसे छोड़ा है तो फिर ये एक सीरियस बात है। इसका मतलब है कि अभी तक आप में ये समझ विकसित नहीं हो पाई है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बहुत बिगिनर हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको तैयारी करते हुए लगभग एक साल हो चुके हैं तो डेफिनेटली ये चिंता की बात है कि आपने इसे क्यों छोड़ा। और अगर आपने इसे पढ़ा है तो फिर मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या आपने इस पर नोट तैयार किया, एक छोटा सा नोट बनाया। मैं नोट्स बनाया की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं नोट बनाया, यानी कि जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि विराग गुप्ता जो लिखते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, और वो आपके लिए नहीं लिखते हैं लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा होता है कि वो इस तरीके से लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए लिख रहे हों, वो इस तरह से लिखते हैं। अब आप देखिए कि इसमें बकायदे उन्होंने 5-6 पॉइंट बताए हैं, इनको लेकर के बताए हैं कि कैसे ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ है और इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला पॉइंट उन्होंने संसद के लिए कहा, दूसरा उन्होंने सरकार के लिए कहा, तीसरा उन्होंने विपक्ष के लिए कहा, चौथा उन्होंने न्यायपालिका के लिए, पांचवा उन्होंने मीडिया के लिए कहा, और फिर आखिरी में लिखते हैं कि कानून का शासन भी एक पक्ष है। कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने पॉइंट्स दे दिए और बता रहे हैं कि इनको लेकर के क्या क्या स्थितियां अभी देश में है जो लोग कह रहे हैं। खत्म हो गई बात, एक बहुत ही खूबसूरत सा नोट आपका तैयार हो गया, बहुत ही खूबसूरत सा नोट, और खासकर इससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक है जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं या जो आप लेक्चर सुन रहे हैं वो अपडेट हो गया, अपडेटेड हो गया वो। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा और अपनी तैयारी को इसी तरीके से आगे बढ़ाना होगा। बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागिए मत, थोड़ी सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके पास हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना जानिए। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं गुलाब दास जामताड़ा झारखंड से और आकांक्षा शर्मा कानपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।